श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ஸ்தோத்திரம் இதம் மன்மேயம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீபாதம் ஸ்ரீகுரு வைஷ்ணவாம்சம் ஸ்ரீரூபம் சார்வஜாதம் சரணநாதாந்தம் பஞ்சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசஹிதம் கிருஷ்ணசைதன்யதேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ணபாணா சரணலலிதா ஸ்ரீஷாந்தம் நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்திவேதாந்த சுவாமி நாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரணி நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷாத்யதேசபாலினி ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாகர ஸ்ரீவாஸ்வாமி கௌர பக்தவிருந்த ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि प्रधानतः वो तीन कारणों के लिए प्रकट होते हैं, अवतार होते हैं, परित्राणा या साधुना विनाशाय चतुष्पिता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे. वो कहते हैं परित्राणा या साधुना, साधुओं की या भक्तों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृति में है, जो दुष्ट लोग हैं उनका संहार करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए समय समय पर युग युग में भगवान प्रकट होते हैं. संभवामी युग युगे, मैं युग युग में प्रकट होता हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं. तो भगवान श्री कृष्ण ने तो भगवद्गीता में अपने प्राकट्य के कारण तो बता ही दिए, फिर भी आचार्य ने भगवान के प्राकट्य के तथ्य के ऊपर विचार करते हुए अपने टीका में कहा है कि सबसे पहले तो भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए क्या भगवान को आने की आवश्यकता है? वैसे देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान के नाम का सब जप और कीर्तन कर रहे हैं. भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है. तो जब भगवान के भक्त भगवान का नाम सतत लेते हैं तो भगवान का नाम ही उनकी रक्षा करने के लिए पूर्ण तरह सक्षम है. तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो हरि नाम ही हमारी रक्षा करेगा. तो भगवान को आके अलग से अवतार लेके हमारी रक्षा करने की जरूरत नहीं है. हालांकि वो कभी कभी ऐसा करते हैं, जैसे कि उन्होंने प्रहलाद महाराज के संदर्भ में किया था. आने की जरूरत नहीं है भगवान को, परंतु उनके हृदय में भगवान के उनके भक्तों के प्रति इतना प्रेम होता है कि वो स्वयं प्रकट होते हैं अपने भक्तों की रक्षा. परंतु वैसे देखा जाए तो उनका नाम ही काफी है. जो भगवान के नाम का जप और कीर्तन करते रहते हैं सतत, बस भगवान का नाम ही उनकी रक्षा करेगा. तो भगवान को आने की आवश्यकता है. तो दूसरी बात, विनाशाय च दुष्कृताम, तो क्या फिर दुष्ट लोगों का संहार करने के लिए भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि भगवान की जो भौतिक शक्ति है वो काफी है. उनको एक हार्ट अटैक दे दिया अंदर से, हृदय पर दौड़ लेके खत्म हो गया। बहुत बड़ा भूकंप हो गया, बहुत कुछ हो गया, भगवान कुछ भी कर सकते हैं अपने भौतिक शक्ति के द्वारा। तो दुष्टों का विनाश करने के लिए भौतिक शक्ति काफी है, और उनके जो तेजस्वी प्रकाशमान शक्तिशाली क्षत्रिय भक्त हैं, जो राज ऋषि हैं, वो काफी है। जैसे राजा परीक्षित है, अर्जुन है, महाराज युधिष्ठिर हैं, ये लोग अपनी ओर से आराम से भगवान की भक्तों की रक्षा कर सकते हैं। और तीसरी बात है धर्म संस्थापना। तो क्या भगवान को धर्म की स्थापना करने के लिए आने की आवश्यकता है? नहीं वास्तव, क्योंकि जब उनके शुद्ध भक्त उपस्थित हैं संसार में जो धर्म का प्रचार करते हैं, तो भगवान को आने की क्या आवश्यकता है? उनका भक्त ही सारा काम कर लेते हैं, और प्रचार करने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं उनको। कृष्ण शक्ति देना है तार प्रवर्तन, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि यदि कृष्ण भक्ति का प्रचार किसी को करना है तो कृष्ण के शक्ति प्राप्त किए बिना ये संभव नहीं है। जैसे श्रीमद् भगवत जी 70 साल के आयु में अकेले निर्धन अवस्था में अमेरिका चले गए। वहां जाकर उनको पता नहीं था कि वो कैसे क्या करने वाले हैं, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, लेकिन इतना साहस उनके अंदर था कि वो अकेले चले गए। क्यों चले गए, ये साहस कहाँ से आया? जो उनके गुरु महाराज और भगवान के आदेश में विश्वास था, अटूट विश्वास था, वो श्रद्धा थी, इसलिए इतना साहस करके वो चले गए। और जब जा रहे थे तो अमेरिका के तट पर पहुंचने के पहले उन्होंने 2 गीत लिखे, 2 भजन, 2 कविताओं की रचना उन्होंने की, और उनमें से एक भजन है मार्किनी भागवत धर्म। मार्की मतलब बंगाली में अमेरिका। तो इस भजन में उन्होंने विचार किया है कि मैं अमेरिका तो प्राय पहुंच गया हूँ, परंतु यहाँ के लोगों की अवस्था देखने से ऐसे मन में हैरानी होती है कि इन लोगों को भागवत धर्म, कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्ति कैसे सिखाया जाए? ये लोग रजोगुण और तपोगुण में इतने लगे हुए हैं कि कैसे उनको समझाया जा सकता है ये कृष्ण भक्ति क्या है, नियमों का पालन कैसे करना चाहिए, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं आपके हाथों में एक कठपुतली हूं, जिस तरह से आप मुझे नचाना चाहते हैं कृष्ण, मैं वैसे भी नाचने के लिए तैयार हूँ आपके आदेश के अनुसार। मेरे मुख से यदि आप जो भी कुछ शब्द निकलवाना चाहते हैं आपके गौरव में, आपके भक्ति के मार्ग के प्रचार के लिए, तो आप मेरे मुख से निकलवा सकते हैं। और यदि आप मेरे मुख से कुछ नहीं निकलवाएंगे या कुछ बकवास निकलवाएंगे और मेरे मुख को मेरे शब्दों से कुछ असर नहीं पड़ेगा, तो वो भी आपके हाथ में। आप यदि मुझे शक्ति देंगे तो आपका काम हो पाएगा, आप मुझे शक्ति नहीं देंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो ये एक बात है, ये सारे भक्ति के शास्त्र में पाए जाते हैं। रामानंद राय भी चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि मैं एक तार वाले वाद्य के समान हूं, स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और बजाने वाले आप हैं। जिस तरह से आप ये वाद्य बजाते हैं वैसे वैसे आवाज निकलेगी। दूसरे शब्दों में जिस तरह से आपने आप मेरे मुझे शक्ति देना चाहते हैं, मेरे मुख से आप तरह तरह के शब्द या उत्तर निकलवाना चाहते हैं, वैसे ही होगा। कहने का मतलब ये है कि भगवान के भक्ति का प्रचार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान के जो राजर्षि भक्त हैं और भगवान के इस तरह के शुद्ध भक्त हैं जैसे नारद मुनि हैं या प्रभुपाद जी हैं, वो पर्याप्त है। तो भगवान को आने की क्या जरूरत है? तो आप समझ गए जो बात को हम कहना चाह रहे हैं। भगवद गीता में भगवान ने तीन कारण दिए हुए हैं उनके अवतार लेने के लिए। पहला कारण कौन सा है? भक्तों की रक्षा करना। तो क्या वास्तव में भगवान को भक्तों की रक्षा करने के लिए आने की जरूरत है? है कि नहीं?
नहीं,
नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हरि नाम लेकर ही भक्त भगवान के भक्त की रक्षा कर सकते हैं। दूसरी बात, जो दुष्टों का विनाश करने के लिए जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो भी करने के लिए आवश्यक है क्या?
नहीं
है, क्योंकि उनकी भौतिक शक्ति और उनके जो प्रकाशमान राजर्षि क्षत्रिय होते हैं वो ही काफी है दुष्टों का विनाश करने के लिए। और तीसरी बात, धर्म की स्थापना करने के लिए भी ये राजर्षि भक्त हैं और नारद मुनि और प्रभुपाद जैसे परिराज आचार्य परमहंस आचार्य हैं जो सब जगह भ्रमण करके धर्म की स्थापना कर सकते हैं। तो ये तीन कारण तो भगवान बता देते हैं कि मैं इन कारणों से प्रकट होता हूँ, लेकिन देखा जाए तो इन तीनों कारणों से भी भगवान को आने की जरूरत नहीं है, बस फिर भी भगवान आते। एक कारण तो ये है कि वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भक्तों के प्रति जब स्नेह रहता है तो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। हम देखते हैं कि संसार में भी यदि हमारे परिवार का कोई सदस्य है, हमसे बहुत निकट है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में उस व्यक्ति के प्रति स्नेह या प्रेम रहता है। परंतु ऐसे संसार में कितने सारे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में बहुत दुर्घटनाएं हो रही है, हम सबके पास जाके तो उनको राहत देने का प्रयास नहीं कर सकते और न ही हम कर सकते भी यदि चाहेंगे तो। एक आदमी कितना कर सकता है? तो उस एक व्यक्ति के प्रति हम इतना स्नेह क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि वो हमारा है, एक अपना पर उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में है। तो भगवान के भक्तों को भगवान कहते हैं ये मेरे निज जन हैं, वो मेरे अपने परिवार के लोग हैं, तो जब ये कष्ट में होते हैं तो मैं अवश्य इनकी रक्षा के लिए, इनकी भलाई के लिए प्रकट। तो ये भगवान का स्वभाव है, इसलिए भक्त वत्सल उनका नाम है। जिस तरह से एक गाय अपने बछड़े के प्रति बहुत स्नेह की भावना रखती है, उसी तरह से भगवान अपने भक्तों के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं। आपने कभी देखा है पशु योनि में भी, मनुष्य योनि की बात दूर रखिए, पशु योनि में भी एक माँ अपने बच्चे की रक्षा कैसे करती है? चाहे बंदरिया हो जो अपने बच्चे की रक्षा करती है, या हाथी है, या कोई शेर है, शेरनी है। वैसे तो शेरनी इत्यादि उनका स्वभाव बड़ा उग्र होता है, उनको देखने से ही भय लगता है, तो उनसे दूर रहना चाहते हैं। परंतु अपने बच्चे के प्रति वो इतना स्नेह दिखाते हैं, इतने कोमल उनका व्यवहार हो जाता है। तो ये स्नेह जो है मनुष्यों की बात दूर है, जानवरों में भी पाया जाता है, तो भगवान में क्यों नहीं होगा? तो भगवान के हृदय में भी उनके भक्तों के प्रति ऐसे ही स्नेह होता है और इसलिए वो आते हैं। लेकिन फिर भी ये संपूर्ण कारण नहीं है भगवान के अवतार लेने का। तो इस श्लोक में 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 36वें श्लोक में जो भगवान के बारे में बात करी गई है ये असली कारण है, मूल कारण है भगवान के भौतिक जगत में प्रकट होने का। तो आइए दोबारा एक दो बार इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, और यदि हो सके तो आप इस श्लोक को कंठस्थ करने का प्रयत्न करें। बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक है। अनुग्रहाय
भक्तानां
मानुषं देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो
भवेत्।
अनुग्रहाय भक्तानां करने के लिए, जिनके ऊपर भक्तानाम भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए मानुषं देहं आश्रितः, भगवान अपने आप को मनुष्य समाज में स्थित करते हैं, मनुष्यों की तरह ही एक देह स्वीकार करते हैं। दूसरे शब्दों में वो मनुष्य समाज में आके ऐसा व्यवहार करते हैं, उनका रहन सहन, उनका बोल चाल इत्यादि ऐसे होती है कि अन्यों को लगता है कि ये भी हमारे जैसे ही एक मनुष्य है। वैसे देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण हर एक योनि में प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं, कभी कभी जलचर प्राणियों में भी आते हैं, मछलियों के योनि में जैसे मत्स्य अवतार हो गए, पक्षियों के योनि में कभी भगवान प्रकट होते हैं जैसे कि हंस अवतार, कभी कभी जानवरों के योनि में प्रकट होते हैं भगवान जैसे वरह अवतार, कभी कभी आधा नर आधा मनुष्य और आधे जानवर ऐसा रूप धारण करके आते हैं जैसे नरसिंह भगवान, कभी कभी ऋषियों के समाज में जन्म लेते हैं जैसे कि कपिल देव, कभी देवताओं के समाज में जन्म लेते हैं जैसे वामन देव, कभी कभी मनुष्यों के समाज में आते हैं एक क्षत्रिय रूप लेकर आते हैं जैसे प्रभु रामचंद्र। तो भगवान के समस्त लीलाओं में से उनकी वो लीलाएं सबसे मधुर मानी जाती हैं जो कि मनुष्य समाज में स्थित होकर भगवान करते हैं। मानुषं देहं आश्रितः, तो भगवान की सारी लीलाएं बहुत मधुर है, परंतु इन सारी लीलाओं में से वो लीलाएं सबसे मधुर मानी जाती हैं जो कि भगवान मनुष्य समाज में प्रकट होकर करते हैं, इसको नर लीला कहते हैं। इसी बात को यहाँ दोहराया जा रहा है, मानुषं देहं आश्रितः, एक मनुष्य की जैसे ही दिखने वाला देह धारण करते हैं और समस्त प्रकार के नर लीलाओं में से जैसे श्री रामचंद्र की लीला हो और अन्य भी लीलाएं ऋषभदेव की लीलाएं हो, इन समस्त प्रकार के नर लीलाओं में से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सबसे मधुर हैं। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से भी अनेक प्रकार की लीलाएं हैं। भगवान हस्तिनापुर में लीला करते हैं, कुरुक्षेत्र में लीला करते हैं, द्वारका में करते हैं, मथुरा में करते हैं, वृंदावन में करते हैं, तो वृंदावन में प्रकट होने वाले जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं वो सबसे मधुर है। और वृंदावन के लीलाओं में बहुत सारी विविधता है। बाल लीला करते हैं जिसमें कि वो सख्य रस का स्वागत करते हैं, एक छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, माखन चोरी करते हैं, रोते हैं, फिर आगे चल के अपने बाल बाल मित्रों के साथ में क्रीड़ा करते हैं, गायों को चराने जाते हैं, अपने मित्रों के साथ में बहुत तरह तरह के वन में खेल करते हैं, मस्ती करते हैं, ये उनकी कौमल्य लीला है। और फिर आगे चल के किशोर अवस्था की लीला करते हैं गोपियों के साथ रास लीला आदि। तो भगवान श्री कृष्ण के समस्त लीलाओं में से वृंदावन की लीलाओं में से जो ये उनके माधुर्य रस की लीलाएं हैं गोपियों के साथ में वो सबसे मधुर और ऊंचे माने जाते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात ये है कि जो बद्ध जीव है, जो संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में अटक के पड़े हैं, जो अज्ञान में पड़े हैं, जो अपने आप को भौतिक शरीर मानते हैं, देहात्म बुद्धि, ऐसे लोगों के मन में भगवान श्री कृष्ण के ऐसे माधुर्य रस की लीलाओं के प्रति तरह तरह की गलत धारणाएं होती है और उसको गलत समझते हैं, उनकी निंदा करते हैं। परंतु ये वास्तव में भगवान के सबसे श्रेष्ठ लीला है, सबसे मधुर लीला है। तो फिर से संक्षेप में कहते हैं, समस्त प्रकार के कार्यों में से भगवान के कार्य सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के समस्त प्रकार के लीलाओं में से उनके नर लीलाएं श्रेष्ठ हैं। उनके समस्त प्रकार के नर लीलाओं में से कृष्ण रूप में उनकी जो लीलाएं हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण के समस्त प्रकार के लीलाओं में से उनके वृंदावन की लीलाएं श्रेष्ठ है। और वृंदावन की लीला में से सबसे सबसे श्रेष्ठ उनके माधुर्य रस की लीलाएं हैं जो वो गोपियों के साथ करते हैं। और यही वो लीलाएं हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा गलत फहमी लोगों को है और इसके लिए लोग भगवान कृष्ण की निंदा करते हैं। तो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का एक विकृत प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन। इसलिए जो आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे ऊंचा है उसको यहां से यहां पर सबसे नीचा माना जाता है। और यहां पर जो सबसे ऊंचा हम मानते हैं भौतिक जगत में, वो आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम में सबसे निम्न श्रेणी का है, सबसे नीचा है। तो भगवान के धाम में उनकी ये माधुर्य रस की लीलाएं बहुत मधुर होती है, बहुत श्रेष्ठ होती है। इसलिए तो उनका नाम ही दिया गया है माधुर्य रस, जो मधुरता से भरे हुए हैं। लेकिन इन लीलाओं को समझने के लिए हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। जब तक हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं तब तक हम भगवान के इन लीलाओं की शुद्धता को और मधुरता को समझ नहीं पाएंगे। हम सोचेंगे अरे वे ये तो भगवान है, भगवान हो के भी ऐसे कैसे करते हैं, बीच रात में रास लीला करते हैं, भगवान ऐसे करेंगे तो मनुष्य लोग भी ऐसे नकल करेंगे, भगवान को ऐसे नहीं करना चाहिए था, इस तरह से हम सोचने लगेंगे। क्योंकि हमारे ऊपर जो एक नीति मोरालिटी की आवश्यकता है हम उसका विचार भगवान के ऊपर आरोपित करते हैं। हमारे लिए नियम है तो भगवान के लिए भी होना चाहिए, भगवान के ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए, इस तरह की धारणाएं हमारे मन में उत्पन्न होती है। परंतु सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं कि ये जो लीला है रासलीला के संदर्भ में ही सुखदेव गोस्वामी श्लोक कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहं आस्थितः। तो अपने भक्तों के ऊपर विशेष रूप से कृपा करने के लिए वो एक साधारण मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं उनके भक्तों के संग में। हमें याद रखना चाहिए कि हम ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को दूसरा ही शरीर स्वीकार करके आते हैं, वो अपने निज दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं, जो उनका गोलोक वृंदावन में अपने धाम में जो शरीर है आध्यात्मिक शरीर सच्चिदानंद शरीर उसी शरीर को स्वीकार करके वो यहाँ आते हैं, अपने निज शरीर में आते, कोई दूसरा शरीर स्वीकार करके नहीं आते। और फिर यहाँ आने के बाद क्या करते हैं, भक्त सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, भजते ताकृषी क्रीड़ा, हे भगवान श्री कृष्ण इस तरह के क्रीड़ा या लीलाएं करते हैं। भगवान का एक ही काम है लीला का। हमारे जीवन में कितने सारे काम होते हैं, कभी कभी हम हैरान हो जाते हैं, ये भी करना वो भी करना ये भी करना, और कभी कभी हम सोचते हैं कितना अच्छा होता कि केवल भगवान की सेवा के लिए हमें समय मिल जाता, परंतु ये नहीं, हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। परंतु भगवान के लिए क्या है, उनका एक ही काम है लीला करना। इसलिए तो श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय जर्मनी से एक व्यक्ति भगवान की खोज में भारत में आया था। उस जमाने में भी थोड़ी बहुत आध्यात्मिकता भारत में थी, आजकल तो टेलीविजन और ये वो उसके कारण लोगों के अंदर जो एक आध्यात्मिक संस्कृति है भक्ति भावना है वो भी प्राय खत्म हो चुकी है। तो खैर वो भारत में आए भगवान को ढूंढने के लिए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि भारतवर्ष ये आध्यात्मिक संस्कृति का देश है, यहाँ पे हिमालय में कितने ऋषि मुनि रहते हैं और इतने सारे तीर्थ स्थान है यहाँ भारत में और कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े दिव्य ग्रंथ हैं इस देश में, तो गंगा है यमुना है हिमालय है, तो हमें आना चाहिए भगवान को ढूंढना चाहिए। तो वो आए और इधर उधर बहुत घूमे और बहुत घूमने के बाद अनेक वर्षों के बाद फिर वो इस निर्णय पे पहुंचे कि मैं भगवान श्री कृष्ण को ही भगवान मानता हूं। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप ऐसे निर्णय पे कैसे पहुंचे, आप इतने सारे तीर्थ स्थानों में गए अलग अलग मंदिरों में गए, तो तरह तरह के देवी देवता आदि सब देखे उनके बारे में सुना, तो आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। उन्होंने कहा कि देखो जहाँ भी मैं जाता हूँ अलग अलग मंदिरों में तो वो जो भी मूर्ति है वो कुछ ना कुछ काम करती है, जो चित्र हमने देखे तो उनमें कोई ना कोई कोई काम कर रहे हैं। जैसे दुर्गा देवी है वो महिषासुर का वध कर रही है, या तो फिर वो सृष्टि की रचना में लगी हुई है। शिव जी के चित्र मैंने देखे तो शिव जी ध्यान में स्थित है, वो भी तो किसी के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान करना भी तो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत कष्ट करना पड़ता है जब बैठ के ध्यान में अपने आप को स्थित करने के लिए। तो एक के बाद तो वो ऐसे वर्णन करते गए और फिर कहने लगे कि जब मैंने श्री कृष्ण के चित्र देखे और उनका विग्रह देखा तो क्या देखा, ये तो केवल विलास कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, बांसुरी बजाते हैं गायों को चराते हैं रासलीला करते हैं, ये भगवान तो जिनका और कोई काम नहीं है केवल विलास करना विहार करना एंजॉय करना वो भगवान, परंतु भगवान का विलास भगवान का विहार जो है हमारे भोग कार्य की तरह नहीं है। भगवान अपने आध्यात्मिक अंतर्गत शक्ति का भोग करते हैं, उससे अपने प्रिय भक्तों के साथ में आनंद का आदान प्रदान। करते हैं। इसलिए जो वृंदावन के निवासी हैं, गोपियां हैं, गोपगण हैं, इनके भी शरीर आध्यात्मिक है, हमारे जड़ पदार्थों से बने हुए शरीर नहीं है, खून हड्डी पसीने से बने हुए शरीर उनका शरीर ऐसा नहीं है, उनका शरीर पूरी तरह से सच्चिदानंद है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध गोपियों के साथ में है वो बिल्कुल शुद्ध है। संसार के पुरुष और स्त्री के बीच में जो संबंध होता है उस तरह का संबंध बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होके ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं अपने ब्रजवासियों भक्तों के साथ में करते हैं, केवल लीला करते हैं, नृत्य करते हैं, तो ऐसे लीला सबसे श्रेष्ठ लीलाएं माने जाते हैं। ये है परम सत्य भगवान। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भजते तादृशी क्रीड़ा। तो ऐसे मनुष्य समाज में प्रकट होके, वृंदावन में प्रकट होके, वो ऐसे मधुर मधुर लीलाएं प्रकट करते हैं। और ऐसे लीलाएं प्रकट करके क्या करते हैं, गोपगणों को गोपियों को आनंद देते हैं। और केवल उनको नहीं, यह श्रुत्वा तत्परं भवेत्। जो भी व्यक्ति ऐसे लीलाओं के बारे में सुनते हैं उन भक्तों को भी बड़ा आनंद मिलता है, वो भी उनके शरणागत भक्त बन जाते हैं। तत्पर भवे, तत्पर मतलब जो बहुत ही प्रेम भावना से शरणागत हो चुके हैं भगवान के चरण कमलों में। दूसरे शब्दों में शुक्रदेव गोस्वामी ये कहते हैं कि अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण मनुष्य समाज में आकर सुंदर सुंदर मधुर लीला प्रकट करते हैं, और इन लीलाओं के बारे में सुन के मनुष्यों के हृदय में उनके प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है और मनुष्यों को भी दिव्य आनंद आता है। तो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो ये भगवान के प्रकट होने का मूल कारण है। और भगवान के भक्तों को आनंद कैसा देते हैं, सुंदर लीलाओं को प्रदर्शित करके। तो ये एक बहुत रहस्यमय सार है, बहुत कॉन्फिडेंशियल बात, सीक्रेट रहस्यमय बात है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण के शरण में आने का एक अवसर मिला है, भगवान के सुंदर लीलाओं को सुनने का अवसर मिला है। और भगवान श्री कृष्ण के उत्सव जब मनाते हैं, जैसे जन्माष्टमी है इत्यादि, हम तो भगवान की कथा करते ही है, लेकिन आज से एकादशी से पूर्णिमा तक, बलराम जयंती तक, ये चार पांच दिनों में ये झूलन यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी झूले पर बिठाए जाते हैं भक्तों के द्वारा, और फिर भक्त लोग झूलन करते हैं, उनको झुलाते हैं, और इसमें बहुत आनंद पाते हैं, क्योंकि ये भी एक लीला है भगवान की। अब भगवान झूले पर क्यों बैठना चाहते हैं, अरे हम भी बैठना पसंद करते हैं, तो भगवान क्यों नहीं पसंद करेंगे। कितने सारे घरों में बड़े बड़े झूले लगे हुए होते हैं, खास करके गुजरात में हमने देखा है, क्या दक्षिण भारत में इतना नहीं होता, लेकिन गुजरात में देखा है और राजस्थान में, अरे के घर में गांव में झूला अवश्य होना चाहिए, बड़ा सा भोजन देने के बाद सब वहां झूले पर रखते हैं झूला। और बच्चों के लिए तो पार्क आदि में तो झूले होते ही हैं। तो हमारे अंदर जो झूले में बैठने की जो प्रवृत्ति है वो कहाँ से आई, भगवान से आई। तो भगवान भी वृंदावन में ऐसे झूले के ऊपर बैठते हैं राधा रानी के साथ में, राधा रानी भी अपनी गोपियों के साथ, सखियों के साथ में झूले पर बैठती हैं। आपने ऐसे कई तस्वीर भी देखे होंगे भक्तों के द्वारा जो भगवान के झूले पर बैठने वाले दृश्य हैं वो दिखाए गए हैं, इस किताब में तो नहीं है, परंतु ऐसे बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं उनको आप देख सकते हैं। हमारे वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर में, मंदिर के अंदर दीवार पे एक ऐसे बहुत सुंदर चित्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण झूले में झूल रहे हैं, बहुत ऊंचे जा रहे हैं और उनके ग्वाल बाल मित्र भी उनको झूला कर रहे हैं। तो ऐसे लीलाएं भगवान करते हैं वृंदावन में, विलास विहार एंजॉय करते हैं। तो झूलन यात्रा के समय हम भी ऐसे भगवान को झूले में बिठाते हैं और सारे भक्त आके उनको फिर झूला झुलाते हैं और भगवान को आनंद देते हैं और खुद भक्तों को भी बहुत आनंद आता है और साथ साथ फिर सुंदर भजन कीर्तन आदि होते हैं। और झूलन यात्रा के अंतिम दिन फिर बलराम जयंती है, बलराम जी का आविर्भाव दिवस, उस दिन बलराम जी के प्राकट्य के बारे में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो अभी हम झूला लगा आएंगे और झूला ला के फिर भगवान झूला झुलाएंगे हम सब एक एक करके और साथ साथ में हम थोड़े भजन भी गाएंगे, ठीक है। तो वृंदावन आज हमें मंगलुरु को मंगलुरु नहीं बनाना है, हमें मंगलुरु को वृंदावन बनाना है, ठीक है। अभी हमें भूल जाएंगे कि हम कहाँ बैठे हैं, मंगलुरु में नहीं बैठे हैं, हम अभी वृंदावन में बैठे हैं, ठीक है। तो झूला तैयार है, झूला तैयार और साथ साथ हम बैठ के भजन भी करेंगे। तो एक एक करके फिर आते आप झूला झुला सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Our Thank you. Thank you. Thank you. I'm not sure if I'm going to be able to do that. Thank you.